జనత్రికాళకేవన్ విఘ్నహరణమంగళకరణ రామదాసయానంద్ మస్తక పర గురుదేవజీ హృదయ విరాజే రామ్ రామదాస దోనూపఖాన్ సబ్ విధ పూరణ కామ్ చింతా దీన దయాల కో మో మన సదానంద్ జాయో సో ప్రతిపాల శ్రీ రామదాస గోవింద్ నిరంజనం నిష్ప్రతిభం నిరీహం నిరాశ్రయం నిష్కలమ ప్రపంచం నిత్యం ధ్రువం నిర్విషయస్వరూపం సనాతన రామమహం భజామి. ఓం తారకం తన్మంత్రం రామదాస గురువిష్టితం సదాకాలం జపే జాప్యం త్రివిధ తాప వినాశనం కలికల్మషనాశాయై ప్రాణిమోక్షహేతవే దయాలో మహారాజేన మంత్రోయం బణితపురా బ్రహ్మ విష్ణు మహేషాద్యాయశ్యంశాలోకసాధకాత్మాదిదేవం శ్రీరామం విశుద్ధం పరమం భజే. ఆనందమానందకరం ప్రసన్నం జ్ఞానస్వరూపం నిజబోధరూపం యోగీంద్రమీడ్యం భవరోగవేద్యం శ్రీమద్గురుం నిత్యమహం నమామి. విభుం పద్మనేత్రం దధానం తురీయం ప్రకాశస్వరూపం నుతం విశ్వదేవై శ్రుతిజ్ఞానగమ్యం శుభం విశ్వనాథం స్తువే వేదవేద్యం గురుం రామదాసం. గుఫావాసీ గురుపద నివాసీ రవి మహారదేన సంఘారీ త్రిదివ్ ప్రతిహారీ స్ఫుటగుణ సమచ్చేతోహారీ సకలముపహారీ నవముదాం దయాలు శ్రీ స్వామీ నయన పథగామీ భవతు మే. కాయేన వాచా మనసేంద్రియర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా అనుసృతస్వభావాత్ కరోతి యత్ యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయేతాత్ నారాయణాయేతి సమర్పయామి. बोली आनंद कंद भगवान की जय. श्री रामदास जी महाराज की जय. श्री दयालदास जी महाराज की जय. श्री राम गुरुदेव जी महाराज की जय. अनंत कोट संत महात्माओं की जय. हे प्रभु परम दयाल हमारा आप बिना कुण करे उधारा. परम पंत गुरुदेव बतायो सिद्ध रूप आत्म समझायो. अपना जान करी प्रतिपाला पीवक जीव आपने शाला. भगत सिंगार प्रभाव पिछाणो आप प्रसाद आप में जानो. कुण दिशंतर जाए चली भगत उन देशते श्री गुरुदेव सहाय मोहि कृपा करिके कहो. उमंग भक्त आवही देशंत देख चावही लिया सुतन सोहता वैराग ज्ञान मोहता ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಆಪಿಯ ಜೀವ ಕುರಂದ ಕಾಪಿ ಜೋರಿ ಜುಗಲ್ಲ ಸೋವಹಿ ಮಾತಾ ಸುಮನ್ನ ಮೋವಹಿ ರಷ್ಟ ಮೇ ರಸಾವಹಿ ಸುಮಷ್ಟ ದೇಶ ಆವಹಿ ಕರೆ ನಾಟಕ ಅಂತರ ವಿರಧಯಾಪಖಂತರ ಕಿಶೋರ ಸುತ ಥಾವಹಿ ವಡೆ ಪ್ರವಾಣ ಭಾವಹಿ ಜೀರ್ಣಯಾಪ ಅಂಗಯ ಸುಚತ ಮನ ರಂಗಯೇ ರಮಣ ದೇಶ ಗುಜರಾತ ಮೇ ವೃದ್ಧತೆ ಅರ್ಧಾಮಾತ್ ಶಿಶುವಯವಪ್ಪುಪದೇ ಚೌಗುಣಿ ಇಚರಜ ಭಯೋ ವಿಖಾತ್. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಾಯಕ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂ ಪರಮ ಆರಾಧ್ಯ ಇಷ್ಟ ಗುರುದೇವ್ಗೆ ಚರಣ ಸಾದರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಸಂತ ಮಹಾಪುರುಷೋ ಕೆ ಚರಣ ಸಾದರ ವಂದನ ಎಂ ಸಮಸ್ತ ಆಬಾಲ ವೃದ್ಧ ಭಾಯಿ ಬಹನೋಕ್ಕೆ ಜೇಠಾಯಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬಾದ ಅಪ್ನೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸದುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸತ್ಪುರುಷೋ ಕಿ ವಾಣಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಕುಚ ಭಗವತ್ ವಚನ ಭಗವತ್ ಭಾವ ಜೊ ಸತ್ಪುರುಷೋ ಕಿ ಕೃಪಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೈ ಯಥಾಮತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರೆಕ್ಕೆ ಚೇಷ್ಟಾ ಕೀ ಜಾ ರೀ. ಭಕ್ತಿ ಕಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮನುಷ್ಯ ಕೋ ಪರಮ ನಿರ್ಮಲ ಬನಾ ದೇತಾ ಹೈ. ಚಾಹೆ ಅಸುರ ಭೀ ಕ್ಯೋ ನೀ ಹೋ ಜಬ್ ಉಸ್ಮೇ ಭಕ್ತಿ ಕಾ ಸಂಚಾರ ಹೋತಾ ಹೈ ವೋ ಅಸುರ ಭೀ ದೇವತಾಂ ಸೇ ಬಢ ಕರ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮ ಭಾಗವತ್ ಬನ್ ಜಾಯಾ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ದೇಖೋ ಭಕ್ತಿ ಕಾ ಐಸಾ ಏಕ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಹೈ ಜಿಸ್ ಪರ ರಂಗ ಚಡ್ತಾ ಹೈ ವೋ ಉಸ್ಕೋ ಅಪ್ನೆ ರಂಗ ಮೇ ರಂಗ ಹೀ ಲೇತಾ ಹೈ ಅಪ್ನೆ ರಂಗ ಮೇ ರಂಗ ಲೇತಾ ಹೈ ವೋ ಭಕ್ತಿ ಕಾ ರಂಗ. ಔರ್ ದೂಸರೆ ಲೋಗೋ ಕೋ ಏಕಾಏಕಿ ಉಸ್ಕಾ ಅನುಭವ ಭೀ ನೀ ಹೋತಾ ಕಿ ಯಹಾಂ ಪರ ಇಸ್ ಪರ ಭಕ್ತಿ ಕಾ ರಂಗ ಹೈ. ರಾಮಾಯಣ ಆಪ್ ಲೋಗ ಪಡತೆ ಸುನತೆ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಜಾನತೆ ಹೀ ಹೈ ರಾವಣ ಆಯಾ ಯಹಾಂ ಪರ ಔರ್ ಸೀತಾಜಿ ಕಾ ಹರಣ ಕರ್ಕೆ ಲೇಕೆ ಗಯಾ. ರಾವಣ ಕಿ ನಗರಿ ಹೈ ಲಂಕಾ ನಗರಿ ಔರ್ ಹಮಾರಾ ಭಾರತ ಪ್ರದೇಶ ತೋ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಮೇ ಯಹಾಂ ಪರ ಭಕ್ತಿ ಕಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಥಾ ಹೀ. ರಾವಣ ನೇ ವಿಚಾರ ಕಿಯಾ ಕಿ ಮೇರೆ ಯಹಾಂ ಪರ ಸಭಿ ರಾಕ್ಷಸ ಲೋಗ ರಹಾ ಕರತೆ ಹೈ ಸಬ್ ಕಾ ಕಾಮ ಹೀ ಆಶ್ರಿ ಖಾನ್ ಪಾನ ಹೈ ಔರ್ ವ್ಯವಹಾರ ಭೀ ಮಾರ ಕಾಟ ಕಾ ಹೀ ಹೈ ದಯಾ ಭಾವ ಕಿಸಿ ಕೆ ದಿಲ್ ಮೇ ಹೈ ನಹೀ. ಮೇ ಹೂ ಯಹಾಂ ಕಾ ರಾಜಾ ಇನ್ ಲೋಗೋ ಕಾ ರಾಜಾ ಹೋನೆ ಕೆ ನಾತೆ ಮೇರಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೈ ಮೇರಿ ಪ್ರಜಾ ಕಾ ಭೀ ಕೈಸೆ ನ ಕೈಸೆ ಭಲಾ ಹೋ ಇನ್ ಆಚರಣೋ ಸೇ ತೋ ಇನ್ ಲೋಗೋ ಕಾ ಭಲಾ ಹೋನೆ ವಾಲಾ ನಹೀ ಹೈ. ಯದಿ ಕಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ಜೋ ಭಾರತ ಪ್ರದೇಶ ಮೇ ಭಕ್ತಿ ಹೈ ವೋ ಭಕ್ತಿ ಹಮಾರೇ ಯಹಾಂ ಪರ ಆ ಜಾಯ ತೋ ಭಕ್ತಿ ಸೇ ಖಿಂಚೆ ಹುಯೇ ಭಗವಾನ್ ಭೀ ಪೀಚೆ ಪೀಚೆ ಆ ಹೀ ಜಾಯೆಂಗೇ. ಭಕ್ತಿ ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ಆಯೆಂಗೇ ತೋ ಜೀವೋ ಕಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವಶ್ಯ ಹೋಗಾ ಹೀ. ಐಸೇ ವಿಚಾರೋ ಸೇ ರಾವಣ ದೇಖತಾ ಕಿ ಮೇ ಭಕ್ತಿ ಕರೂ ತೋ ಭಕ್ತಿ ಹೋಣೆ ವಾಲೇ ನಹೀ ಹೈ ತೋ ಭಕ್ತಿ ಜಾ ಮಿಲ್ ರಹೀ ಹೈ ವಹೀ ಸೇ ಲೇಕೆ ಆ ಜಾಓ. ತೋ ವೋ ಯಹಾಂ ಆಯಾ ಔರ್ ಸೀತಾಜಿ ಕೋ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಮಾನ್ ಕರ್ಕೆ ಉನ್ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ಕೆ ಫಿರ್ ಉನ್ನೇ ಲೇಕೆ ಗಯಾ ಹೈ. ಹೃದಯ ಮೇ ಸುಖ ಕಾ ಅನುಭವ ಕಿಯಾ ಮೇ ಆಜ ಭಕ್ತಿ ಕೋ ಲೆ ಜಾ ಕರ್ಕೆ ಮೇರಿ ಪ್ರಜಾ ಕೋ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ಲಬಾ ಲಗಾ ಪಾಉಂಗಾ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಬಹುತ್ ಆನಂದ ಕಿ ಅನುಭೂತಿ ಹೋಣೆ ಲಗಿ. ಉನ್ನೇ ಯಹಾಂ ಸೇ ಲೇಕರ್ ಕೆ ಗಯಾ ಔರ್ ಜಬ್ ಭಕ್ತಿ ವಾ ಲಂಕಾ ಮೇ ಗಯೀ ತೋ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಭೀ ಲಂಕಾ ಮೇ ಪಹುಂಚನಾ ಹೀ ಪಡಾ ಜೈಸೆ ನಹೀ ತೋ ಐಸೆ ರಾಕ್ಷಸೋ ಕೆ ಬೀಚ ಭಗವಾನ್ ಕ್ಯೋ ಜಾತೆ ಹೈ. ಔರ್ ಜಬ್ ಭಗವಾನ್ ವಹಾಂ ಪರ ಪಹುಂಚೆ ಹೈ ತೋ ರಾಕ್ಷಸೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೇ ಭಲೇ ಹೀ ಉನ್ಕಾ ಯುದ್ಧ ಹುವಾ ಯುದ್ಧ ಮೇ ಜೋ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಹಾಥ್ ಸೇ ಮಾರೇ ಗಯೆ ಅಸುರ ಥೆ ವೇ ಸಬ್ ಕೆ ಸಬ್ ಮುಕ್ತಿ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುಯೇ. ತೋ ಯೇ ರಾವಣ ಕಾ ಉಪಾಯ ಭಕ್ತಿ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಹೀ ಕೈಸಾ ಭೀ ಪ್ರಾಣಿ ಕ್ಯೋ ನೀ ಹೋ ಉಸ್ಕಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಹಜ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಹೈ. ಇಸಿ ಭಾವ ಸೇ ಉಸ್ನೆ ಸಾರಾ ಕಾಮ ಕಿಯಾ ಔರ್ ವಹೀ ಉಸ್ಕಿ ಯೋಜನಾ ಸಫಲ ಹುಯಿ. ಅಬ್ ಭಕ್ತಿ ಕಾ ಜೋ ಮಾರ್ಗ ಹೈ ಸಜ್ಜನೋ ये उत्तर की तरफ बढ़ने का मार्ग है, क्योंकि दक्षिण की तरफ गई हुई है, वही भक्ति वापस अपने यहाँ पर प्रस्थान करती है तो वो सदा सदा के लिए तो वहां रह नहीं सकती उन असुरों के बीच में, इसलिए उसका प्रस्थान दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। और उत्तर मार्ग संतान गति सारे उत्तर दिशा का सब संतों का मार्ग होता है, अर्थात उत्तर दिशा सब संतों का स्थान माना गया है। जितने भी सत्पुरुष हुए हैं पहले उनका निवास उत्तर दिशा में है, दक्षिण में लंका की तरफ जाए वहां यमपुरी का है, यमराज जी का निवास है, पर उत्तर में संतों का निवास है। तो उत्तर की तरफ ध्रुव जी का भी निवास आप लोग देख लीजिए किधर मिलेगा, जो ध्रुव तारा देखते हैं, जो स्थाई है सदाई सारा ब्रह्मांड जिनकी परिक्रमा देता है उसका भी निवास उत्तर में ही है। तो भक्ति का आश्रय लेने पर प्राणी असहज में उत्तर दिशा की तरफ गमन करने वाला बन जाता है, अर्थात उत्तर पदगामी बन करके संतों के धाम में पहुंचने का अधिकारी बन जाता है। वो भक्ति का माध्यम पाकर के उसका सहज में आसानी से कल्याण हो जाता है। उसी भक्ति के विषय में पहले कुछ श्रृंगार की बातें बताई, उसने 16 श्रृंगार किया, तो यहाँ जिज्ञासु ने बात पूछी है कि महाराज जो उन्होंने श्रृंगार किया वो बात तो भक्ति की समझ में आई, पर आपके वचन अमृत रूप है तो अब आप कृपा करके बताइए भक्ति का जो प्रस्थान यहाँ अपने उत्तर दिशा की तरफ होता है तो किस प्रकार उसका प्रसंग है, मैं वो जानना चाहता हूँ। और ये प्रसंग तो भागवत में आप लोग भली भांति सुनते ही है, और जब भागवत कथा होगी तो आप लोग भली भांति सुनेंगे ही। उसका संक्षेप से वर्णन इस प्रकार है, पूछा है कि कौन दिशांतर जाए चली भक्त कौन देश ने, कौन उस देश से रवाना होकर के कौन सी दिशा में भक्ति का गमन हुआ है महाराज। तो गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि मन में उत्साह हुआ कि मैं उत्तर की तरफ प्रस्थान करूं। ज्ञान और वैराग्य उसके दो पुत्र है, वे दोनों पुत्र उन दोनों पुत्रों को अपने साथ में लिया, जिनको देखते ही सभी प्रकार के जीवों के पाप कांपने लग जाते हैं, कहीं ठहर नहीं सकते। दोनों पुत्रों की युगल जोड़ी उसको देख करके माता बड़ी प्रसन्न हो रही है, बड़ा आनंद का अनुभव कर रही है। उधर से जो प्रकट होकर के आई और कर्नाटक में प्रकट होकर के आई, कर्नाटक से प्रकट होने के बाद में फिर वो महाराष्ट्र प्रदेश में पहुंची है, और वहां से आने तक बाद में गुजरात में आई है। तो जो जो आगे बढ़ने लगी उसके बेटों की उम्र ज्यादा बढ़ने लगी, बेटे ज्यादा वयोवृद्ध होने लगे। रमण देश गुजरात में वृद्ध दरदाम आए जो थी, उस समय स्वयं भक्ति भी गुजरात में आते आते कुछ क्षीण हो गई थी, और बच्चों की उम्र है उनसे भी ज्यादा बढ़ने लगी। आगे ज्यों त्यों करके गुजरात से बढ़ी है, तो मन में सोचते विचारते कि यहां तक रहने में ठीक नहीं है, भक्ति को बिगाड़ करके प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए वहां पर भक्ति की जो आयु कमजोरी पड़ गई। वहां से आगे बढ़ी उत्तर की तरफ, उत्तर प्रदेश में वृंदावन धाम में पहुंची। वहां आने पर भक्ति का शरीर तो ठीक हो गया, वो निरोग हो गई, परंतु पुत्र जो उसके थे दोनों ही ज्ञान और वैराग्य वे निर्बल हो गए। अब उनकी चलने फिरने की शक्ति नहीं रही, वे उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाना चाहते हैं, लेकिन जावे तो जावे कैसे, बेटों को पीछे छोड़ के कैसे जावे। वो अपने पुत्रों का मुंह देखती है, वो बेचारे अपने माँ का मुख देखते हैं, परंतु उनमें चलने की बोलने की क्षमता नहीं, प्यास और भूख के मारे जैसे बेचैन हो गए, उनकी आंखें पथरा गई, इस प्रकार बहुत ही दुख हो रहा है माता को वृंदावन में। इस प्रकार उनकी यह दशा हुई। भ्रमण करते हुए एक बार नारद जी महाराज वहां पर पहुंच गए। अंश वंश कुण कहां कुण नाम आए कहां जाए हो, शोभा अति अनूप हितु दर्शाए हो। नारद जी ने उसे पूछा कि बीवी तू कौन है, कहां से आई है, कहां जा रही हो, क्या बात है। तो उसने बात बताया कि द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ है और मेरा नाम है भक्ति, ये ज्ञान वैराग्य नामक मेरे दोनों पुत्र हैं। मैं इन पुत्रों की वृद्धता जीर्ण अवस्था को देख करके और इस प्रकार बड़ी दुखी और खिन्न हो रही हूँ। आप दिव्य दृष्टि महात्मा हो महाराज, भगवत स्वरूप हो, आप कृपा करके जैसे भी दुख मिटे हमारा वैसा उपाय बताइए, आप सर्व समर्थ हैं, आप अपना परिचय बताइए। तो मुनि ने कहा नारद नाम नहीं गांव तात मात ब्रह्म है। आप कौन है पूछा, तो मेरा तो नारद तो नाम है, गांव कहाँ है ये, कोई गांव नहीं है और माता पिता मेरा केवल ब्रह्म ही है। ये सृष्टि जो है सारी सृष्टि में भ्रमण करते रहना ये मेरा काम है। एक जगह में एक गाय दुए इतनी देर ही ठहर सकता हूँ। गो दोहर विचरित जग सारा, गाय दूने में समय लगता है 7 मिनट का, तो एक जगह करीबन 7 मिनट ही मैं ठहर सकता हूँ, उससे ज्यादा एक जगह ठहरा नहीं जाता है। और वे निरंतर भ्रमण करता रहता हूँ। जनु समाज काज आज मोह बन हेर ही, जहाँ कहीं भी संतों का समाज होता है, संतों की भीड़ लगी रहती है, मैं वहाँ जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, संतों की सत्संग सुनता हूँ और उन संतों के भाव मैं विचरण करते हुए जगह जगह जा करके लोगों को बताता रहता हूँ। मतलब डाकिये को काम करे नारद जी, उठे समाचार आटी हटे समाचार आटी देता रहे सप्लाई। भक्ति कहने लगी भूर भाग्य आनंद बढ़ियो मिले मुनेश दयाल, कृपा निधि मेरी अर्ज ऐसा हो खुशहाल। बड़ा अहोभाग्य में नारद जी महाराज, आज मुझे नारद जी मिल गए, भगवान ने कृपा की जो आपको मेरे पास में भेज दिया, अब आप कृपा करके ऐसा उपाय करो जिससे मेरे दोनों पुत्र खुशी हो जाए। नारद जी ने कहा अच्छी बात है, मैं वही उपाय करता हूँ। वे उन ज्ञान वैराग्य नामक दोनों पुत्रों के पास में गए जो वृद्ध बने हुए और पड़े हुए हैं बेहोशी दशा में। वहां पहुंचकर उन्होंने वेदों की वाणी सुनाई, गीता जी का पाठ सुनाया, एक बार नहीं अनेक बार मंत्रोच्चारण किया। वाणी सुनकर के थोड़े से इधर उधर से शरीर हिला करके वे बैठे हुए, थोड़ा सा विश्राम मिला, परंतु फिर वे ज्यों के त्यों पहले थे वैसे वैसे वापस पड़ गए। अब मन में चिंता लगी नारद जी को, अंत सोच वंत वे कह मुनेश, अब कवन भांत कर वो प्रवेश, धीर भी भक्त मत सोच मान, तुम बाल जगे मम सुखी प्राण, या लोक मंज तत्वात हो ये परलोक मंज लाऊ सको, ये तत्काल वीण धर चल उमंग, उत्तम ठोर जन कर प्रसंग। अब बाद में नारद जी खुद चिंता में पड़ गए, फिर भी उन्होंने धैर्य दिलाते हुए भक्ति से कहा हे परम धीरवती भक्ति माता, तुम मन में सोच मत लाना, तुम्हारे बालक जैसे भी जगेंगे और जैसे इनको आराम मिलेगा वैसा उपाय मैं ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, इस लोक में हो चाहे परलोक में, वो बात जहां कहीं भी होगी मैं उसको खोज करके जरूर लाऊंगा। इस तरह तुम धैर्य रखो, भगवान का विश्वास रखो और अपने इन बालकों की सेवा करो, चाकरी करो। इस प्रकार नारद जी ने उनको समझाया, धैर्य दिलाया और अपनी वीणा बजाते हुए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण नारायण
बद्री नारायण।
hari narayana narayana narayana
hari narayana narayana narayana
hari narayana narayana narayana
hari narayana narayana narayana
bhajaman narayana bhajaman narayana narayana narayana
bhajaman narayana narayana narayana
shriman narayana narayana narayana
shriman narayana narayana narayana
shriman
नारद जी महाराज वहां से दूसरे के कल्याण करने की भावना को लेकर के भ्रमण करने लगे। दुनिया अपने स्वार्थ के लिए जगह जगह भ्रमण करती है, जहां कहीं भी जाती है केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही घर से बाहर पैर रखती है, बाहर आना जाना करती है, दूसरों के लिए नहीं। परंतु संत महापुरुष विचरण करते हैं तो दूसरों के भले के लिए विचरण करते हैं। अपने को तो चलने फिरने में परिश्रम भले होगा वो बात अलग है, लेकिन भला दूसरों का हो, कल्याण दूसरों का हो, ये उनके हृदय का भाव। इस भाव को लिए हुए नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए गए, जहां कहीं अच्छी अच्छी जगह पर संत महापुरुषों का समागम सुना भी वहां पर गए, तीर्थों में गए और कई स्थानों पे वे गए। भटकते हुए जा जा करके वे संतों से पूछने लगे, महाराज ज्ञान और वैराग्य का दुख कैसे मिटे वो आप उपाय बताइए। परंतु किसी जगह उनको संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। किसी ने कहा ज्ञान को कभी दुख हो ही नहीं सकता, वैराग्य को कभी दुख हो ही नहीं सकता, ये तो संसारी लोगों के सुख दुख की बात है, तुम क्या बात करते हो। नारद जी महाराज आप तो कहते हो नहीं, लेकिन मेरे तो आंखों के सामने बीती हुई बात है। और आगे गए, असंभव बात जान करके फिर हो गए और आगे गए। होते होते पूछते हुए बद्रिकाश्रम की तरफ चले गए नारद जी महाराज। सहज भाव से जा रहे थे, जो रास्ते में उनको सनकादिक ऋषि मिल गए, उनको प्रणाम किया और जीव दूसरों के भले के विषय में बात पूछी, ज्ञान वैराग्य का दुख कैसे मिटे। आपस में मिलकर के दोनों को बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। शनकादिकों को देख करके नारद जी को प्रसन्नता है और नारद जी को देख करके शनकादिकों को प्रसन्नता है। तब कहे तो सनक मुनि क्यों उदास। सनक जी ने पूछा कि हे मुनि नारद जी आप उदास क्यों घूम रहे हो, आप तो सदा प्रसन्न रहने वाले, आप तो खिलाड़ी आदमी हो, हर किसी को प्रश्न करने वाले हो, आपकी उदासी का क्या कारण हो सकता है। मैंने तो देखा नहीं कि भूत भविष्य वर्तमान में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जो कि आपको उदास कर सके, परंतु इस समय उदासी छाई हुई है, इसका कारण क्या हो सकता है। चितवन कून कारण दयाल मोह चरित लगे ए कवन ख्याल। मुझे बड़ा आश्चर्यजनक ये प्रसंग लग रहा है। नारद जी ने बताया कि भगवान क्या बताऊं, वैराग्य ज्ञान वृद्ध भेद हो तत्माद भक्ति तरुणाद हो वेदांत गिरा कीन ही विशाल नहीं उठ चले इन अवे काल मनु आश्चर्य ऐ सोच आय कीजिए अवे इनकी उपाय। महाराज बात ऐसा है कि मुझे तो और किसी बात से दुख नहीं है, परंतु परे दुख दुबड़ो हूं मैं तो कह रहा हूं। आज मुझे रास्ते में ज्ञान और वैराग्य दो भक्ति के बेटे मिले जो कि मूर्छागत होकर के मरणासन्न दशा में हैं, मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, उनकी माता है जवान। संसार में ये बड़ा आश्चर्य होता है कि माँ जवान और बेटे बूढ़े हों, जबकि माँ बूढ़ी होनी चाहिए, बेटे जवान होने चाहिए। ये आश्चर्यजनक बात है। और उनकी दशा को देख करके मैंने महाराज अपनी तरफ से बहुत कुछ उपाय किया, उनका दुख मिटे, उनकी बुढ़ापे की स्थिति दूर हो। मैंने वेदांतों की बातें सुनाई और कई शास्त्रों के पाठ उनको सुनाए, वेदों के पाठ भी सुनाए, परंतु ज्ञान वैराग्य नहीं तो उठे नहीं कोई बात महाराज, उनमें चेतना नहीं आई। इस बात से मुझे आश्चर्य है कि सभी में इन वचनों को सुनकर के चेतना आ जाए करती है, पर उनमें क्यों नहीं चेतना आई, इस बात का मुझे बड़ा भारी अफसोस है। अब इसके लिए क्या उपाय किया जाए? नारद जी, इनकी एह उपाय है श्रवण यज्ञ भागोत, ताको जन वर्णन करे जानत मुनि उदोत, आप सूप आपे मही भागवंत जन पार, सब कारज सहजा सर है आनंद करण विलास। वहां सनक जी ने कहा, नारद जी महाराज इसका एक सरलतम उपाय है, ज्ञान यज्ञ उनको सुनाए कराइए, और ज्ञान यज्ञ कराने में श्रीमद् भागवत महापुराण उत्तम ज्ञान यज्ञ है। ये भागवत है जो मृत्यु को सुधारने वाला होता है, दूसरे ग्रंथ होते हैं जीवन को सुधारने वाले हैं, हमें कैसे आराम से जिया जाए, किस तरह सुख मिले, सुविधा मिले, शरीर निरोग रहे, ये सारी चीजें दूसरे ग्रंथों से मिलेगी, परंतु भागवत से हमारी मृत्यु सुधरती है। मृत्यु जो कि अवश्यम भावी है हरेक प्राणी की, कौन सा ऐसा प्राणी है जिसकी मृत्यु नहीं होगी? मृत्यु अगर नहीं सुधरेगी तो जीवन सुधरा हुआ क्या काम आएगा? इसलिए भागवत जो है, और उस भागवत के लिए देखो कहीं आना जाना नहीं, उनको बाहर से कोई चीज लानी नहीं, भागवत ग्रंथ हमारे अंदर ही आनंद का खजाना खोल देता है। जब हम भागवत का श्रवण करते हैं उसके द्वारा आनंद के स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, इस बात की अनुभूति हो जाती है, और जब आनंद रूप परमात्मा की अनुभूति हृदय में हुई, सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे, कोई दुख नजदीक नहीं रहेगा। इसलिए आनंद का सागर है जो प्रत्येक प्राणी के लिए, इसमें ही मृत्यु को सुधारने की बात है, तो मृत्यु जिससे सुधरता है वही जो भागवत ग्रंथ, मुझे ठीक लगता है कि इस भागवत ग्रंथ के द्वारा तुम ज्ञान वैराग्य का दुख मिटा सकते हो बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। कथा के माध्यम से दुख की निवृत्ति और मृत्यु टलती है, जहां आने जाना का संसार बंधन खत्म हो जाता है, बहुत सरल उपाय। तो इस प्रकार कैसे भी भयंकर मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ प्राणी है, परंतु वो यदि भागवत का आश्रय ले लेता है, श्रवण कर लेता है, अपने कानों से रसपान कर लेता है, तो उस रसायन से उसके अंतरात्मा में परम शांति शांति, गहरी शांति छा जाती है, आनंद आनंद परम आनंद। सब कार्य सहजन सरे आनंद करण विशाल, ये परम स्थायी आनंद करने वाला है। एक तो टेम्परेरी इलाज करने वाला होता, जैसे कोई बीमारी है, इंजेक्शन लगा लिया तो तत्कालिक तो आराम हो जाएगा, लेकिन स्थायी रोग नहीं मिटेगा उसे, शायद हो सकता है कोई न कोई साइड इफेक्ट और हो जाए, दूसरी बीमारी पैदा हो जाए। आयुर्वेदिक औषधोपचार के द्वारा धीरे धीरे इलाज होता है, लेकिन होता है वो स्थायी इलाज। इसी प्रकार इससे स्थायी आनंद की प्राप्ति होगी जो कभी मिटने वाली नहीं है, क्योंकि जब हृदय में परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी कि परमात्मा स्वरूप मैं हूं और परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं है, तब फिर दुख नजदीक आएगा कहां। अरे जब प्रकाश है, सामने मौजूद है, सूर्य मौजूद है, तो अंधेरा कहां आएगा, कहां टिकेगा। एक बार अंधेरे ने जाकर के भगवान के पास में शिकायत की, महाराज ये सूर्य लेना आपका मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे बहुत तंग करता है, कहीं भी मुझे ठहरने नहीं देता, बड़ा दुख देता है, ये भी आपकी संतान, मैं भी आपकी संतान, मैं और किससे जाकर के अपने दुख की बात कहूं, इसलिए मेरा दुख मिटाइए, समझाइए सूर्य को मुझे दुख नहीं करे, दुख नहीं दे। भगवान ने सूर्य को बुला करके कहा, क्यों बेटा सूर्य तुम इस अंधेरे को तंग ज्यादा करता है। सूर्य ने कहा, महाराज मैंने अंधेरे को कभी देखा ही नहीं, अंधेरे को कभी देखा नहीं, देखूं तो मैं तंग करूंगा, कैसी शक्ल होती है अंधेरे का मुझे पता ही नहीं महाराज। अब बताइए, वो अंधेरा सूर्य में करे तो क्या करे, मेरे आने से पहले वो तो भाग जाता है, कहीं रहता नहीं है। वही बात है, अपने भगवान की अनुभूति हो जाएगी अपने आप में तो दुख रहेगा कहाँ। तो दुख की पूर्ण रूप से स्थायी रूप से निवृत्ति ऐसे महापुरुषों के कल्याणकारी वचनों के माध्यम से प्राणी को सहज में प्राप्त हो सकती है। इसलिए भागवत का आश्रय इसके लिए परम उत्तम बात है। यहां एक पूर्व पक्षी ने अर्थात किसी तार्किक आदमी ने प्रश्न कर लिया, प्रश्न कर लिया कि वेचर जग मुनि तारिया असुर नमुची याद, व्यास बोध प्रेरक जहां तम ही कहो संवाद। महाराज नारद जी तो परम ज्ञानी है, आपने पहले बताया है, इन्होंने कई राक्षसों का उद्धार किया, कई यक्षों का उद्धार किया, असुर नमुची जैसे जो असुर थे उनका भी इन्होंने उद्धार किया, इन्होंने कल्याण का मार्ग बताया। इन्हीं ने वेद व्यास जी महाराज को उपदेश दिया था जब वे दुखी हो गए थे, संतप्त तो हो गए संसार में, मैंने क्या ऐसा काम किया जिससे कि वेद विवाह करने पर भी, कई ग्रंथ रचना करने पर भी आत्मा में शांति क्यों नहीं हो रही, ऐसे अशांत चित्त से वेद व्यास महाराज बैठे थे। तो नारद जी ने जाकर के उन्हें प्रेरणा दे करके उनका दुख दर्द मिटाया था। तो आप ही ने बताया कि ऐसे नारद जी, उन्हें नारद जी को इस प्रकार ज्ञान ही नहीं कि भागवत शुद्ध का कल्याण हो जाए, ये अंधेर खाता कैसा, कौन सी बात सच्ची कौन सी बात झूठी, ये प्रश्न करने वाले ने तर्क किया। अब उसके तर्क के विषय में वापस महाराज ने उत्तर दिया है, देखो भागवंत में कहो दोष किणकु ए भाई, तात ढार श्रुक है आपनो पाठ सदाई। अरे भाई मैंने जो ये बात बताई है ना, वो भागवत जी में लिखी है वैसी बताई है, मैं अपने जेब से निकाल के नहीं बता रहा हूं। और जैसे पिता कोई बात पुत्र को पढ़ाता है तो पुत्र वही बात तो बोलेगा जो पिता ने बात पढ़ी याद कराई है, दूसरी बात कहां से लाएगा। तृतीय स्कंद उद्धार प्रथम व्यासा प्रतिबोधम, और इधर देखो तीसरे स्कंद में ये उद्धार की बात आती है, पहले स्कंद में वेद व्यास महाराज को ज्ञान देने की बात आती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के मातम में ये जो ज्ञान की बात है, ज्ञान भक्ति विराग की बात महात्म में आती है। तो कथा का प्रसंग क्रम दे करके आप पता लगाओ तो ये जो पहले नारद जी महाराज को जब ये विस्मृति हुई या भ्रांति हुई है पहले की बात है, और कथा चली बाद में, तो बाद में कभी इनको भ्रम पैदा हो ऐसी बात नहीं है, ये पहले की बात समझ करके इसमें ऐसे समाधान करना चाहिए। भगत श्रुत कयो सुमेदम सर्व व्यास वर्णन करो सिनक उत्तम मुनि पावही जाय बुझ अवतारकों कवन मनोरथ गावही। अरे भाई तुम विचार तो कर, परमात्मा की माया बड़ी विचित्र है, ध्यान दो, माया बड़ी विचित्र है परमात्मा की। शिव वायक पर सिद्ध शास्त्र सब में साखी, पदम पुराण इतिहास सोई गवना प्रतिभा की, अद्भुत कारण एह कयो किन सू कहो जावत, रुद्र गयो भरमाय लटी तोर तरंग रावत, विधि उपाय कन्या भुलाये कपि आनंद मुनि सोवही, वह कारण कैसे भयो हरिगत सब गुम होवही। परमात्मा की जो लीला है, परमात्मा का जो दिव्य चरित्र है, वो बड़े 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 लोगों को मोहित कर देता है, और जब उनकी माया जाल मोह जाल पैदा होता है उसके बाद में मनुष्य में कोई होश अपना तरफ नहीं रहता, उसका सब ज्ञान नष्ट हो जाता है। अरे भाई आप सुनो, सभी शास्त्रों में शिवजी के वचनों की साक्षी दी जाती है, पद्म पुराण में उनकी अनेक बातें स्पष्ट आती है, उन्हीं ने शंकर भगवान ने पार्वती को उपदेश दिया है, ज्ञान बताया है, अनेक प्रकार की ज्ञाते सब बातें कही है। अब बताओ ना, वही शंकर भगवान है जिस समय वे मोहिनी अवतार के ऊपर मोहित होकर के उसके पीछे पीछे भागे क्यों फिरे थे, आगे आगे मोहनी जा रही है आप उसके पीछे पीछे भागे जा रहे हैं, उसकी चोटी को पकड़ने के लिए, जटा को पकड़ने के लिए, उस भुजाओं में पकड़ने के लिए है। तो जिन सभी वेदों में शास्त्रों में जिनको साक्षी दी जाती है उन्हीं शंकर भगवान ने ये क्यों किया, मोहित हो गए, प्रभु की लीला थी, भगवान ने मोहनी रूप बताना था, तो अरे नाटक पूरा नहीं करे तो उसका क्या पता चलेगा। तो ये रुद्र गयो फरमाए लटी तोर तिरंग रावत, एक भोगी आदमी के समान ऐसे उनके पीछे पीछे भगे और कामांध होकर के मान लो साधारण प्राणी एक स्त्री के पीछे भागे जा रहा है। विधि उपाय कन्या बुलाए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, सारे जगत को उन्होंने बनाया, उन्होंने जगत को बनाया तो जगत को बनाते समय उन्होंने उनकी एक बेटी पैदा हुई सरस्वती, सरस्वती विद्या देवी जो प्रकट होकर के आई वो अत्यंत ही सुंदरी थी, तो ब्रह्मा जी का मन उसके ऊपर मोहित हो गया, ललचा गया, ब्रह्मा जी का मन उस पर ललचा गया, इस कारण से वो मोहित हो गए। और जब पुत्री के ऊपर ब्रह्मा जी के मन में ये काम भाव पैदा हुआ, मोह भाव पैदा हुआ, तब जो ऋषि मुनि वहां पर बैठे थे उन्होंने निवेदन किया, भगवान आप जगत के सृष्टि के रचना करता हैं, आपके मन में यदि विकार रहेगा तो आगे सारी सृष्टि के विचार ही उल्टे हो जाएंगे, कौन बेटी को गिरेगा और कौन अपने बहन को गिनेगा, कहते हैं बहन बेटी की मर्यादा कौन रखेगा। इस प्रकार वे ब्रह्मा जी उस पर आसक्त हो गए थे, बताइए ये क्या परमात्मा की लीला नहीं तो और है क्या, जो सृष्टि के पैदा करने वाले अपने पुत्र पर आसक्त हो जाए, क्या उनके पास में और कोई संसार की भोग्य वस्तु नहीं थी। इस प्रकार तत्पश्चात ब्रह्मा जी की पूजा सृष्टि में बंद हो गई, जगह जगह कोई उनका मंदिर नहीं बन रहा है, पुत्री पर आसक्त हो जाने करने के मात्र से। इनकी आसक्ति का एक और भी कारण है जो संतों से सुनने में आता है। एक बार की बात, भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर के एक ऋषि मुनियों के यज्ञ में पधारे, ऋषि मुनियों का सत्र चल रहा था, यज्ञ का सत्र चल रहा था, गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर के उस यज्ञ में पहुंचे। गरुड़ जी वहां से अब काम तो कोई था नहीं, विचरण करने के लिए बाहर चले गए, गरुड़ जी बाहर विचरण करने के लिए चले गए, घूमने लगे, भगवान उस यज्ञ कार्य में लगे हुए हैं। उस समय क्या होता है कि गरुड़ जी घूम रहे थे, घूमते घूमते गरुड़ जी तो उस समय स्वाभाविक ब्रह्मा जी भी उस यज्ञ में शामिल होने के लिए हंस के ऊपर सवारी करके उधर पहुंचे, जहां गरुड़ जी जंगल में घूम रहे थे, वन में वन विहार कर रहे थे, वहां पहुंचे, वहां एक हंसनी को देखा तो उनके मन में, गरुड़ के मन में थोड़े विषय के भाव पैदा हो गए, संसार के वासना के भाव पैदा हो गए गरुड़ जी के मन में। ब्रह्मा जी गरुड़ जी के भाव को पहचान गए और पहचान करके ब्रह्मा जी गरुड़ जी के इस विचार पर हंसने लगे और कहने लगे, वारे वाह, विष्णु की सवारी होकर के इतना कामुक बन रहा है, थोड़ी बहुत भी मान मर्यादा नहीं रख रहा है, कैसा भूखी प्राणी तू, ऐसे हंसने लगे और उसको इस प्रकार ललकार देने लगे। उनकी बात सुनकर के गरुड़ जी ने कहा ब्रह्मा जी से, ज्यादा बोल मत बोलो, मैं तो एक सजाती पक्षी को देख करके उसके ऊपर तो आसक्त हुआ हूं, परंतु याद रखना एक दिन आप तो अपनी पुत्री के ऊपर आसक्त हो जाओगे और वो आपकी पुत्री के ऊपर आसक्ति सदा सदा के लिए आपकी पूजा बंद कर डालेगी। मैं तो जैसे पक्षी पर तो आसक्त हूं, कम से कम मैं तो सजाती, लेकिन क्या पुत्री के भोग की वासना का चिंतन करने लायक हुआ करती है, वो आपको भोगना पड़ेगा दंड। ये गरुड़ जी का श्राप लगा, इस श्राप के कारण से ही ब्रह्मा जी को इस प्रकार स्वाभाविक अपने पुत्री के ऊपर आसक्ति पैदा हो गई। तो ये बात बता रहे हैं, तो विधि उपाय कन्या भुलाए कपि आनंद मुनि मोही, तो ये ब्रह्मा जी आसक्त हो गए अपनी पुत्री पर। नारद जी महाराज खुद एक दिन अपना बंदर का मुंह करा बैठे, अपना मुंह बंदर का करा बैठे, बताइए विषयों के प्रति वासना पैदा होने के कारण से। अब कथा तो रामायण में आप लोग जानते ही हो, नारद जी जब तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते समय काम ने उत्पात मचाने की कोशिश की, विचलित नहीं हुए, काम को जीत लिया, पास में आकर के उसने विनय की, क्रोध भी नहीं किया। ओहो, मैंने काम भी जीत लिया, क्रोध भी जीत लिया। जगह 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 जाकर के अपनी महिमा बखान करने लगे। विष्णु भगवान के पास में गए तो उन्होंने कह दिया कि कभी भी जाओ, शंकर भगवान के पास में गए तो कहा तुम और कहीं जाकर के बातें बोले कह देना, पर विष्णु भगवान से ये बात मत कह देना। अब वो सुन करके नारद जी विचार करने लगे, ओहो ये भी काम को जीतने वाले हैं, और परंतु क्रोध इनको भी आ गया, और मैंने काम भी जीत लिया और क्रोध भी जीत लिया, इसलिए मेरे से आगे नहीं बढ़ जाए, इसलिए इनको ईर्ष्या हो रही है मेरे काम वजह से। छत पर चले गए घूमते फिरते, और जो मना किया तो वो बात सबसे पहले कह दी। भगवान विष्णु ने कह दिया चलो कोई बात नहीं, आप तो ऋषि मुनि महाराज, आपका क्या है, आपका जो चिंतन करते हैं उनका सारे विकार दूर हो जाते हैं। ऐसे वहां से फिर बात चलकर रवाना हो गए। भगवान उनका काम मन में अहंकार जो पैदा था उसको नाश करने के विचार से बीच में एक स्वयंवर की रचना कर दी, और वहां राजकुमारी का स्वयंवर नारद जी भी उसमें जाकर के देखते हैं, तो अब विचार किया कि स्वयंवर हो रहा है तो अरे अत्यंत सुंदर कन्या ये मुझे कैसे मिले, अभी तक तो काम को जीत के आ रहे हैं और ये राजकन्या मुझे कैसे मिले, सुंदर में तो साधु पुरुष सुंदरता में लाऊं कहां से। भगवान विष्णु की प्रार्थना की और आपन रूप देव प्रभु मोई, और कहा आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, भगवान मेरी प्रार्थना सुनो। ऐसे प्रार्थना की और भगवान ने उनको बंदर का मुंह बना करके खड़ा कर दिया, सभा में बंदर बन करके आए। तो ये बात बताए कि कपि आनंद नारद जी खुद को बंदर का मुंह वाला बनना पड़ा। ये जिस समय परमात्मा की माया का चक्कर चलता है तो कितने भी ज्ञानी हो वे सब के सब भ्रमित हो जाते हैं, उनका कोई जोर नहीं चलता है। विधि कपि आनंद मुनि सो वही, ये वह कारण कैसे हो गयो, हरिगति सबको मोह भी। तो परमात्मा की कोई गति ऐसी हो गई उस समय तो नारद जी को कोई जो बात याद आनी चाहिए थी वो बात याद नहीं आई होगी, इसलिए उन्होंने ये बात संगादिको से पूछ ली। कह कारण कैसे दियो विष्णु को साप, कवन सेवक धर्म भाई, वही विधि उनके माए लखी किन सु कहो जाई, राम विवल बन माए कवन समृद्धि हो कारण, अग्र सदृश बलवान त्रिषाबंध हुई जल पारण, मारकंड देखो अल्प कवन चरितता को भयो, अकर्ण कर्ण दयाल धन रोम कोट ब्रह्मांड बंदयो। नारद जी आगे चल करके जिस समय उनको वो राजकन्या नहीं मिली तो चिढ़ गए, भगवान विष्णु को भी जाकर के उन्होंने श्राप दे दिया, क्योंकि भगवान ने दिव्य रूप धारण करके वहां पर उस राजकन्या को प्राप्त कर लिया, और राजकन्या और लक्ष्मी दोनों को साथ में लेकर के चलते चलते रास्ते में नारद जी को मिले। नारद जी को अपना बंदर का मुंह देख करके बहुत ही ग्लानी हो रही, मुझे इतना अपमानित कर दिया, थोड़ी बहुत लाज नहीं आई, मिल गए उनको श्राप दे दिया, तुमने जिस मनुष्य शरीर में आकर के मेरा ये काम किया है वही तुम्हें मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, तुमने मेरा बंदर का मुंह बनाया तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अरे साधु मुंडे गाड़ी भी निकले तो फूट ही निकले भाई, हो श्राप भी निकले तो अच्छा, बंदर का मुंह बंदर सहायता करेंगे, ऐसा नहीं कि बंदर भी सहायता नहीं करेंगे, ये कहते तो मुश्किल हो जाती, परंतु बंदर सहायता करेंगे। हो कपि आन कपि आकृति तुम किन हमारी करी किस सहायता तुम्हारी, तो बताओ दियो विष्णु को श्राप कवन सेवक धर्म भाई, ये सेवक का धर्म है कि अपने स्वामी को भगवान को श्राप दे दे, परंतु परमात्मा की लीला है माया है, उसने मोह जाल फैला दिया। वही विधि उनके माए लखी किन सु कहो जाई, वही विधि माया जाल की विधि नारद जी पर छा गई, इस कारण से उस समय उनको जो बात याद आनी चाहिए थी वो याद नहीं आई, तब सनकादिकों से उन्होंने जाके पूछा राम जी जो है उनकी माया दूसरों को चक्कर में डाले क्या, कभी कभी वे अवतार धारण करने वाले स्वयं भगवान भी मोहित अपनी माया के मोह में खुद उसकी लीला कर देते हैं। राम जी तो त्रिलोक के स्वामी हैं, अवतार लेकर के आए हैं, परंतु स्त्री के हरण हो जाने के बाद में वन में व्याकुल होकर के हे सीते हे सीते हे सीते करते करते रो रहे हैं, बिलखते हैं, घूम रहे हैं। स्त्री के लिए बन बन भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं मेरी स्त्री कहां गई, मेरी हर किसी से पूछ रहे हैं कि मेरी स्त्री कहां गई, मेरी पत्नी कहां गई, बताइए क्या उनको मालूम नहीं मेरी पत्नी कहां गई? दूसरी जानकार ज्यादा इनसे, सबको जानकारी प्रदान करने वाले वे हैं, लेकिन उनसे बढ़कर के और कौन हो सकता है? वे ही पूछते हैं, अपनी माया को खुद ही दुनिया में दिखा रहे हैं। एक प्रसंग सुनना जाता है, इस प्रसंग की बात, जब राम जी वन में गए थे, सीता जी साथ में, लक्ष्मण जी साथ में, आराम से कुटिया में विराजमान रहते हैं, लक्ष्मण जी कंद मूल फल लाते हैं, सेवा करते हैं, सीता जी हर समय अपने स्वामी